दो महीने और गुजर गए। अरुणिमा को पांचवां महीना लग गया था। इन दिनों वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। डॉक्टर ने उसे टेंशन लेने के लिए मना किया था, क्योंकि टेंशन की वजह से अरुणिमा ठीक से खाना पीना भी नहीं खा पा रही थी, और इस वक्त उसे अच्छी सेहत की जरूरत थी, क्योंकि बच्चे जुड़वा थे। ताई इस वक्त आस्तिक के साथ महल में ही रह रही थी, और आस्तिक पूरी कोशिश कर रहा था खुद को सामान्य रखने की, लेकिन ये खाली महल उसे काटने को दौड़ता था। इसीलिए वो बहुत कम महल आया करता था। ज्यादातर वो ऑफिस में ही रहा करता था या फिर किसी दूसरे कामों में बिजी रहता था, लेकिन उसे पता था कि अरुणिमा इस वक्त कहाँ है, और वो भी शारदा देवी की तरह एक सही मौके की तलाश में था। आज बहुत दिनों बाद आस्तिक वापस घर आया था। ताई ने उसकी पसंद का नाश्ता बनाया था। वो सीढ़ियों से उतरकर डाइनिंग टेबल की तरफ पढ़ ही रहा था कि इतने में रजत पुलिस टीम के साथ फिर से महल में दाखिल होता है। रजत को देखकर आस्तिक की नज़रें फिर से सख्त हो गई थीं, क्योंकि पुलिस फिर से उसके घर में मौजूद थी, और रजत के हाथों में फिर से एक फाइल थी। इसका मतलब रजत फिर से आस्तिक के खिलाफ सबूत लेकर आया है। रजत आस्तिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस था। आस्तिक ने एक उबासी ली और रजत के सामने आते हुए कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए रजत? देखो, तुम अगर पिछले सबूत के बारे में बात कर रहे हो तो कोर्ट ने उस सबूत को खारिज कर दिया है। वो सीसीटीवी फुटेज फेक है, ये बात कोर्ट ने प्रूफ कर दी है। तो अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? जहाँ तक मुझे लग रहा है, मिलने तो नहीं आए हो, क्योंकि कीर्ति तुम्हारे साथ नहीं है। तो इस बार भी क्या तुम ऑफिसर की तरह आए हो या मेरे बहनोई की तरह आए हो? रजत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और वो आस्तिक के सामने आते हुए कहता है, राजा साहब, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में एक बहुत बेचैनी सी है, और वो बेचैनी इस बात की है कि मुझे आपको सलाखों के पीछे पहुंचाना है। जब तक मैं ये नहीं कर लेता ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और जहां तक बात रही कीर्ति की, तो मेरी पत्नी मेरे साथ मेरे छोटे से घर में बहुत खुश है, और यकीन मानिए, वो यहाँ आने के बारे में बात तक नहीं करती है। जहां तक मुझे लगता है कि वो यहाँ आना ही नहीं चाहती है। आस्तिक का चेहरा गुस्से में भर जाता है और वो रजत से कहता है, अगर कीर्ति यहाँ नहीं आना चाहती है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? रजत हंसते हुए कहता है, अभी अभी कहा ना मैंने आपसे, आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। जब तक आपको सलाखों के पीछे नहीं पहुँचा देता हूँ, तब तक मैं आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे करते रहूँगा। आस्तिक की आंखें छोटी हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और उसने कहा, किस जेल में मुझे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो ऑफिसर रजत? रजत के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी और उसने आस्तिक को देखकर जवाब दिया, घरेलू हिंसा और विवाहित बलात्कार के जुर्म में। रजत की बात सुनकर ताई की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, लेकिन अभिनव ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वो उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से में भरा हुआ था, लेकिन रजत अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए आस्तिक के पास आता है और उसके कानों में झुकते हुए कहता है, और यकीन करिए राजा साहब, इस बार आपका पैसा और आपकी ताकत भी आपको बचा नहीं सकती है। आस्तिक खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और रजत से कहता है, ये क्या मजाक है रजत? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या बकवास किए जा रहे हो? रजत व्यंग्य से मुस्कुराता है और कहता है, ये कोई मजाक नहीं है राजा साहब, बल्कि ये तो हकीकत है। दरअसल आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हुआ है, और ये फाइल आपकी पूर्व पत्नी यानी कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर किया है। उन्होंने कहा है कि आपने उनके साथ मारपीट की है, उन्हें टॉर्चर किया है और उनका रेप भी किया है। रजत की बात सुनकर आस्तिक का चेहरा हैरानी से भर जाता है और उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो जाती है। अरुणिमा ने उसके ऊपर कैसे किया है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? आस्तिक चिल्लाते हुए कहता है, क्यों नहीं कर सकती है राजा साहब, बिल्कुल कर सकती हैं। वो इस देश की एक नागरिक है और उसे अपने अधिकार पता है। रजत ने आस्तिक को देखते हुए कहा। तो आस्तिक का चेहरा गुस्से में और भर जाता है और वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है, जिससे उसके हाथों की नसें भी चटकाने लगती हैं। आस्तिक का दिमाग इस समय काबू में नहीं था। जो लड़की उसका नाम सुनकर डर से कांपा करती थी, आज उस लड़की में इतनी हिम्मत हो गई है कि आस्तिक के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवा रही है। मतलब वो चाहती है कि आस्तिक जेल में सड़े। आस्तिक ने गुस्से में रजत को देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने से क्या होता है? सभी जानते हैं कि मेरा अरुणिमा के साथ डिवोर्स हो चुका है। ऐसे में अगर वो मेरे खिलाफ कोई साजिश भी करती है तो इसमें उसी का फायदा होगा, उसे मेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि मैंने सच में उसके साथ ऐसा कुछ किया है? रजत एक फाइल में से कुछ पेपर निकालता है और आस्तिक की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये मेडिकल रिपोर्ट है जो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि तुम्हारी पत्नी के शरीर पर जो घाव है वो डोमेस्टिक वायलेंस के निशान है और इस पर मोहर डॉक्टर ने लगाई है। आस्तिक का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया है अरुणिमा, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाकर तुमने अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। मैंने सोचा था कि तुम्हें कुछ समय के लिए खुद से दूर रखूंगा और उसके बाद तुम्हारी माँ की जान लेकर तुम्हें फिर से अपने पास ले आऊंगा, लेकिन तुम तो कुछ और सोचकर ही बैठी हो।